आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी का कहना है कि कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट्री एंड मैरिटाइम एम्प्लॉयज यूनियन यानी CFMEU के स्वतंत्र प्रभारी के पास यूनियन की सफाई करने के सारे अधिकार होंगे। ये तब आता है जब यूनियन के व्यवस्थित अपराध के साथ तार जुड़े होने के आरोप सामने आए हैं। फेयर वर्क कमीशन के जनरल मैनेजर मरी फर्लोंग को नए स्वतंत्र प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्कप्लेस रिलेशंस मंत्री टोनी बर्क का कहना है कि वे जरूरत पड़ने पर और नए कानून लेकर के आएंगे ताकि फर्लोंग बेहतर कार्य कर सकें। उनका कहना है कि वे यूनियन का पंजीकरण रद्द करने की सिफारिश नहीं करेंगे क्योंकि ये संगठन के गलत लोगों के लिए वरदान साबित होगा। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने फेडरल सरकार की प्रतिक्रिया का बचाव भी किया है। उनका कहना है कि संगठन ने सरकार को शर्मिंदा नहीं किया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में वे विक्टोरिया के CFMEU अध्यक्ष जॉन सेटका को लेबर पार्टी से निकाल चुके हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सचिव के जरिए CFMEU को फेडरल लेबर पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। वहीं विक्टोरिया की सत्य संभाषण समिति यानी ट्रुथ टेलिंग कमीशन उन आरोपों की जांच करेगी जहां कहा गया है कि सरकारी निर्माण कार्यों में इंडिजिनस कर्मियों को बराबरी का मौका नहीं दिया गया। CFMEU कांड के उजागर होने के बाद ये घोषणा आई है। यूरूक जस्टिस कमीशन का कहना है कि वे उन रिपोर्टों से चिंतित हैं जहां ये कहा गया है कि सरकार निर्माण उद्योग में बराबर मौका और न्यायपूर्वक कॉन्ट्रैक्ट आवंटन करने में विफल रही है। प्रीमियर जेसिंटा एलन ने ये स्वीकारा है कि एक इंडिजिनस संस्था को 2022 के उनके CFMEU अधिकारियों पर आरोप लगाते पत्र के जवाब देने में बहुत देरी हो गई। चिट्ठी में अधिकारियों पर हिंसा और बैन लगाने की धमकी तक के आरोप लगाए गए थे। वहीं NSW सरकार ने CFMEU के निर्माण अंग को लेबर पार्टी से निष्कासित कर दिया है। न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर क्रिस मिंस और कोषाध्यक्ष डैनियल मुकी ने न्यू साउथ वेल्स लेबर ब्रांच को पत्र लिखकर ये मांग की थी। CFMEU के आपराधिक व्यवहार के मामले में फेडरल सरकार एक स्वतंत्र प्रभारी नियुक्त कर रही है। प्रीमियर मिंस का कहना है कि संगठन का ये व्यवहार अस्वीकार्य है। वहीं विक्टोरिया इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियाइयों के साथ संधि करने वाला पहला राज्य बनने की राह पर है। फर्स्ट पीपल्स असेंबली ऑफ विक्टोरिया आज से आधिकारिक रूप से राज्य सरकार के साथ चर्चा शुरू कर रही है। ट्रीटी अथॉरिटी के नेगोशिएशन डेटाबेस में एक आधिकारिक सूचना भी दर्ज की जाएगी। असेंबली के सह अध्यक्ष रूबन बर्ग का कहना है कि लक्ष्य ये है कि प्रथम राष्ट्र जनसंख्या के लिए दीर्घकालिक उपाय किए जाएं। उनका ये कहना है कि ये इंडिजिनस और गैर इंडिजिनस लोगों के आपस के संबंधों को भी बेहतर करेगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल ने हाल के हवाई हमलों में अपने द्वारा ही सुरक्षित घोषित किए गए दक्षिण और मध्य गाजा के इलाकों में 60 से अधिक फिलिस्तीनी लोगों की हत्या कर दी है। इसराइल ने लगभग हर रोज उन इलाकों पर हवाई हमले जारी रखे हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि लोग शरण ले सकते हैं और यह वे सुरक्षित रहेंगे। दूसरी ओर अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार निकी हेली ने पूर्व प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन की घोषणा कर दी है। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की दूसरी रात डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टी को एक करने के इरादे से सभा में प्रवेश किया। पूर्व में विफल हुए उम्मीदवारों ने उनका समर्थन करने की ओर मन बनाया। निकी हेली ने यह स्वीकारा कि वे डोनाल्ड ट्रंप से सहमत नहीं थी लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अब दूसरा डेमोक्रेट उम्मीदवार नहीं जीतना चाहिए। और अंत में खबरें भारत से। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आधार सहित विभिन्न विधेयकों को मोदी सरकार द्वारा मनी बिल के रूप में पारित कराने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए एक संविधान पीठ के गठन पर अपनी सहमति जताई है। अब इस मामले को लेकर जल्द ही कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। वरिष्ठ वकील एवं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया था कि दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अब याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि जब मैं संविधान पीठ का गठन करूंगा तब ही इसका फैसला सुनाया जा सकेगा। धन विधेयक में खास अधिनियम शामिल होते हैं जिनमें टैक्स खत्म करने, उधार लेने, संचित निधि से धन की निकासी, लेखा परीक्षण और लेखा से संबंधित अधिनियम शामिल होते हैं। आपको बता दें कि मनी बिल को सिर्फ एक मंत्री ही पेश कर सकते हैं। ऐसे विधेयक पर राज्यसभा में तो चर्चा हो सकती है लेकिन उस पर कोई वोटिंग नहीं कर सकता। कोई बिल मनी बिल है या नहीं इसका फैसला हमेशा से ही स्पीकर करते हैं। इसे लेकर स्पीकर का ही निर्णय अंतिम होता है। इसी के साथ 17 जुलाई 2024 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दीजिए वृषाली को इजाजत। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।